आज हमारे बीच आदरणीय दमयंती दीदी उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका भी बहुत बहुत दिल से इस सभा में स्वागत करते हैं। आदरणीय दमयंती दीदी वो पुरानी बहनों से हैं जो कि यज्ञ में सेवा की शुरुआत हुई और गुजराती बहनें सबसे पहले पहले जो यज्ञ में आई उन चंद बहनों में से आप एक रही हैं। साकार बाबा की बहुत पालना आपने ली हुई है और गुजरात के सेवा केंद्रों की शुरुआत में आप पायोनियर रही हैं। आप वर्तमान समय जूनागढ़ सब जोन का सुचारू संचालन करती हैं और जूनागढ़ सब जोन के अंतर्गत 80 से ज्यादा सेवा केंद्रों का आप बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रही हैं। महिला विंग की आप गुजरात जोन की कोऑर्डिनेटर हैं और इस उम्र में भी वो इतनी एक्टिव हैं जो उन्हें जहां भी निमंत्रण मिलता है बड़ा दिल से पहुंचकर और बाबा के साथ की वो मीठी मीठी बातें सुनाती हैं। आज आपसे अनुरोध करती हूं कि श्रेष्ठ स्थिति का आधार क्षमा भाव इस विषय पर हमें क्लास कराएंगी आदरणीय दमयंती दीदी।
ओम संधि। अव्यक्त बाप दादा के मिलन के कहो या भद्रामणि के कहो दिन कब आएंगे उसकी इंतजार हम सभी करते रहते हैं। इंतजार करते करते हम सभी के आगे बाबा के मिलने की डेट भी आ जाती है। हम गुजरात वालों को सेवा का टन 25 दिसंबर के ग्रुप में मिला तो सभी हम सोचते थे वह दिन कब आवे और हम सभी मधुबन बाबा की वरदान भूमि कहो चरित्र भूमि कहो कर्म भूमि कहो ऐसी भूमि पर हम सभी पहुंच जाए। आखिर वह दिन आया आज जो हम सभी प्यारे मीठे बाबा के घर पर आ पहुंचे। बाबा के मिलन के साथ साथ ईश्वरीय परिवार का भी बहुत अच्छा मिलन होता है और ये मिलन मधुबन में ही बेहद का मिलन होता है। देश विदेश के सभी भाई बहनों से मिलना होता है तो हमें तो बहुत खुशी होती है और मैं समझती हूँ कि आप सभी को भी बहुत खुशी होंगी। तो बहुत खुशी हमारे जीवन के अंदर थोड़े समय के लिए न रहे लेकिन बाबा का इशारा मिलता है कि सदा के लिए हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए और ऐसी स्थिति हमारी जो बनती है उसको कहा जाता है श्रेष्ठ स्थिति। बाबा हमें अपने कितने सोमान भी याद दिलाते हैं, हमें स्वयं भगवान ने एडाप्ट किया हुआ है। हम भगवान के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा है, हम श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए सदा ही अपने इस संगम युग के मिले हुए स्वमानों को बहुत अच्छी तरह से चलते फिरते उठते बैठते हमें याद करना है। बाबा ने हमको एडाप्ट किया तो अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण बने हैं और हम ब्राह्मणों की जीवन जिसका फाउंडेशन पवित्रता है, आने से ही हमको वरदान मिलता है पवित्र बनो और योगी बनो। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर हमारा पहला ही फाउंडेशन पवित्रता का है और पवित्र जीवन बनाने के लिए हमें बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बता दी। दुनिया वालों को पवित्र रहना असंभव महसूस होता है और हमारे लिए पवित्र बनना संभव है। बाबा ने हमको युक्ति बताई कि तुम निराकार शिव बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हो, परंतु ब्रह्मा के द्वारा एडप्ट किया तो भी हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। इस हिसाब से हमारा आपस में भाई और बहन का संबंध है। अगर हमारी स्मृति के अंदर और हमारी दृष्टि के अंदर ये बात पक्की हो जाए तो पवित्र रहना कंप्लीट सही है। जिसको लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, परंतु हम समझते हैं बिल्कुल सहज है। तो बाबा हमको रोज उसकी सहज विधि बताते ही रहते और उस सहज विधि को सुनकर समझकर और समझने के बाद उसका चलते फिरते चिंतन करे और चिंतन करते मुझे उसको स्मृति में लाकर उसका स्वरूप बनना ही है तो अवश्य हम बन जाते हैं। इन सारी बातों को बुद्धि में रखने से और उसका स्वरूप बनने से हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती है और ऐसा पवित्र बनने से बाबा के साथ हमारा निरंतर योग कैसे रहे उसका जबरदस्त पुरुषार्थ करना है। अभी अभी जानकी दादी का पत्र पुष्प के अंदर क्लास पढ़ा था, दादी ने ऐसे कहा था अमृत वेले बहुत अच्छी तरह से जागंती ज्योत बनकर बाबा को याद करो, फिर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भोजन बनाते और भोजन करते बाबा की याद में रहो और रात को सोने के समय भी आप अकेले नहीं सोना, बाबा को साथ में रख कर के सोना तो देखो हमारे सारे दिन की दिनचर्या में अमृत वेले से लेकर के रात तक क्या अटेंशन रखना है, बाबा को याद करना। अगर बच्चे कहे बाबा पवित्र रहना मुश्किल है तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर योग बल की कमी है। तो पवित्र रहना बिल्कुल सहज तब है जब हमारा योग बाबा के साथ है। इसलिए अमृत वेले 4 बजे बाबा ने हमको जो समय दिया है, बच्चों से मिलने का समय है, बच्चे 4 से 5 आपके लिए समय है, मैं आपको मिलता हूं। 4:45 बजे अगर हम उठे और बाबा को याद करते हैं, वो भक्तों का समय है। अभी जब भक्तों का समय है और उसकी लाइन में हम अगर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बच्चों को तो बाबा देखो वरदानों से झोली भरते हैं। और 4 बजे खास समय इतनी ऊंची अथॉरिटी ने मिलने का समय दिया गया। कोई आज दुनिया के अंदर भी कोई बड़ी अथॉरिटी हो और हमें उसका काम हो और वो अपना टाइम देवे, उसी टाइम को हम कितना अच्छी तरह संभालते हैं और उसी टाइम पर जाकर हम मिलते हैं। 2 मिनट जल्दी जा रहे लेकिन देरी ना हो जाए, ऐसे समझते हैं। तो आज बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है जिसने हम बच्चों को 4 बजे मिलने का समय दिया है। ऐसे समय पर हम बाबा को मिले तो बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भर देते हैं। और सबसे पहला बाबा हमको कौन सा वरदान देते हैं? समान भव। हम सभी को बाप समान बनने का बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है। तो अमृत वेले बाबा हमको ये वरदान देते हैं, समान भव। फिर दूसरा वरदान हमको बाबा से मिलता है कि बच्चे विजयी भव। और तीसरा वरदान अमृत वेले सवेरे बाबा से मिलता है, सफलता मूर्त भव। ऐसे तो वरदान कई प्रकार के मिलते हैं लेकिन अमृत वेले खास ये बाबा से हम बच्चों को वरदान मिलता है। तो अमृत वेले जरा भी हमको व्यर्थ संकल्प न चले, उसका आधार अगले दिन की सारी दिनचर्या पर है। अगर अगले दिन सारे दिन की दिनचर्या का चार्ट हमारा बहुत अच्छा है और रात को बाबा को याद कर जो भी कुछ हमारे से अच्छा हुआ बुरा हुआ हम बाबा को वो चार्ट बता करके बाबा को दे देते हैं और हम खाली हो जाते हैं और हम बाबा को कहते हैं बाबा आज तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं परंतु भूल से मेरे से ये थोड़ा अच्छा कार्य भी नहीं हुआ गए। अच्छा हम परफेक्ट बने नहीं है कोई, अभी हम बन रहे हैं। अगर जरा भी कोई भूल हो जाए चाहे संकल्पों में चाहे वाणी में और चाहे कर्म में लेकिन रात को हम बाबा को दे देवे। बाबा कहते हैं मुझे आप दे दो, अगर बाबा को हम दे देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। खाली हो जाएंगे माना बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। बाबा को दे दिया या बाबा को बता दिया तो हम हल्के हो गए और फिर हम रात को सो जाएंगे तो हमको नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी, कोई ऐसे वैसे बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे और सवेरे उठेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल लाइट, जरा भी भारीपन नहीं होगा। ऐसी लाइट स्थिति में स्थित होकर हम बाबा को याद करेंगे और याद करते हम ये भी सोच सकते हैं कि भगवान इस भूमि पर किस कार्य के लिए आया हुआ है, ये बाबा का उत्तर हुआ है। मैं समझती हूँ 78 वर्ष हो गए भगवान ने इस भूमि पर अवतार लिया है और अवतरित आत्मा अधर्म का नाश और सद्धर्म की स्थापना का कार्य करती है, तो बाबा का ये कर्तव्य है। तो हम भी सवेरे उठे, हम प्यारे मीठे बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी यही बात बुद्धि में रखे, मैं अवतरित आत्मा हूं। आज मैं आत्मा ने ये शरीर धारण किया है और ये शरीर धारण करके मैं अवतरित आत्मा हूँ, तो दिन भर के अंदर मुझे ऐसा कर्म करना है जो सत धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। इसलिए मेरे जीवन के अंदर, स्वयं के अंदर पहले सत धर्म चाहिए। जब दूसरों के अंदर, तब हम सत धर्म की स्थापना कर सकेंगे। सत धर्म माने सद्गुण, तो दूसरों के अंदर भी ऐसे हम सद्गुणों की धारणा करा सकेंगे। तो हमें दिन भर में यही कार्य करना है, ऐसे स्मृति में रख करके, समर्थ संकल्प रख करके, व्यर्थ संकल्प कंप्लीट हम खत्म कर देवे और समर्थ संकल्प को हम बुद्धि में रखे, माना यही हमारा शुभ चिंतन रहे, अर्थात ऐसा ही हमारा समर्थ संकल्प रहे और उन संकल्प के आधार से सारे दिन की दिनचर्या पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और सारे दिन की दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी रहेंगी, इसलिए अमृत वेले समर्थ संकल्प करना, बाबा को बुद्धि में रखना, बाबा को सामने रखना। तो सवेरे सवेरे हमने किसका मुखड़ा देखा, बाबा का, जो सत्यमय शिवम है और जो सुंदरमय। कई बार दिन भर में थोड़ा हमारा दिन कभी बिगड़ जाता है और जब बिगड़ जाता है तब मुख से ऐसे शब्द निकलता है, पता नहीं आज सारे दिन के अंदर मैंने किसका मुंह देखा है जो मेरा दिन खराब हो गया, कहते हैं। तो हमें किसी का भी मुंह नहीं देखना है, मैं और मेरा बाबा। अभी बाबा को जान लिया, पहचान लिया, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, तो हमें बाबा का ही मुख देखना है, तो हमारा सारा दिन कैसा व्यतीत होगा, बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो हमारी स्थिति भी बड़ी श्रेष्ठ बनेगी और वो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आज हम अकेले अकेले नहीं रहते हैं, लेकिन संगठन में रहते हैं। चाहे दो व्यक्ति रहे, चाहे तीन रहे, चाहे चार पांच रहे, चाहे अनेक व्यक्ति रहे, आज देखो मधुबन में आते हैं तो कितना बड़ा संगठन होता है, तो सारे इस संगठन में भी आते हैं। और हम अकेले हैं तो भी प्यार से रहते हैं, दो हैं तो भी प्यार से रहते हैं, संगठन में रहते हैं तो भी प्यार से रहते हैं। तो उसके अंदर हम एक दो के साथ व्यवहार में आते हैं। जब एक दो के साथ व्यवहार में आते हैं तो हम अगर ये चाहना रखेंगे, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसे मेरे संस्कार है, वैसे ही सामने वाले का भी ऐसा ही स्वभाव चाहिए, ऐसा ही संस्कार चाहिए। अभी हरेक अपने से पूछे वो सक्य है, ऐ सक्य मेरे जैसा ही सबका होगा, एक न मिले दूसरे से, बाबा कहते हैं ना। देखो हरेक, हम ड्रामा के एक्टर है, जब ड्रामा के एक्टर है तो हरेक का चेहरा अलग अलग है। अच्छा, हरेक का चेहरा अलग अलग है तो हरेक का स्वभाव और संस्कार भी अलग अलग होगा। अच्छा, किसका स्वभाव, किसका संस्कार हमको न पसंद पड़े ऐसा भी होगा, तो हम क्या करेंगे? चलो, किसने कोई भूल कर दी, किसने कोई ऐसा काम कर दिया, ठीक है, उससे हो गया, उसको करना नहीं था, अब ये हो गया तो क्या करेंगे? तो उसको आप बोल दो, आपको हम क्षमा करते हैं। तो हम आपको क्षमा कर देते हैं तो हम कितने हल्के हो जाएंगे, भारी नहीं होंगे। अच्छा, भूल करने वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, मेरे से भूल हो गई, पता नहीं अब ये क्या बोलेंगे, मुझे डांटेंगे तो, मुझे ये करेंगे तो, मुझे ऐसे करेंगे तो। अच्छा, क्षमा कर दिया तो वो भी क्या हल्का हो जाएगा, उससे हमारे से डर निकल जाएगा। तो क्षमा करने से देखो हम भी हल्के हो गए, सामने वाले भी हल्के हो गए, और हमारी स्थिति कैसी रही? क्षमा भाव रखने से हमारी स्थिति श्रेष्ठ रही। तो श्रेष्ठ स्थिति का आधार क्षमा भाव है। हम सभी ने सुना हुआ है जीसस क्राइस्ट, उसने धर्म स्थापना का कार्य जो किया। अच्छा, करते हुए उसके सामने अंतिम समय पर उसको क्या किया गया? खिला ठोका गया ना। अच्छा, जब खिला ठोका गया तो उसने क्या बोला? हे भगवान, जिसने मेरे लिए ये काम किया है उसको आप माफ कर देना, उसको कोई सजा नहीं देना। ये देखो महान आत्मा की निशानी है। ऐसे कईयों के लिए हमने पढ़ा हुआ है, जो महान आत्मा होती है, जो श्रेष्ठ आत्मा होती है, वो क्षमा कर देती है। जैन धर्म के अंदर ऐसा दिन आता है तो वो लोग मच्छा में दुकड़म बनाते हैं, माना एक दो को चलो हम क्षमा कर देते हैं। जो सजा देनी हो उसके लिए भगवान बैठा हुआ है। हम किसको भी कोई कुछ करते हैं तो हम सजा देने के अधिकारी नहीं है। अगर हम इस रीति से अपने जीवन को चलाएंगे तो उसके आधार से देखो हमारी स्थिति कैसी रहेगी, श्रेष्ठ रहेंगी। साकार बाबा का भी जीवन में हमने अनुभव किया हुआ है कि चलते चलते किसी बच्चे ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। अच्छा, प्रतिज्ञा करने के बाद हमारा बहुत अच्छा योगी जीवन रहे, इसलिए हम कभी भी प्रतिज्ञा को खंडन नहीं करेंगे। परंतु फिर भी अगर किसी कारण से कोई प्रतिज्ञा का खंडन हो गया, किसी बच्चे ने बाबा को सुनाया, तो बाबा है सागर, तो बाबा उसको क्या कह देंगे? ठीक है, आपने बाबा को सुना दिया ना, अभी उसका वर्णन कहीं पर भी नहीं करना, बाबा को बताया ना, अभी आधा तुम्हारा क्या माफ हो गया, आधी विकर्म तुम्हारे खत्म हो गए। सच्चे दिल से साहिब को सुना दिया ना, तो देखो बाबा ने क्षमा कर दिया। अच्छा, क्षमा कर दिया उसका आधा तो माफ हो गया, सच्चे दिल से सुनाया, माना कि देह अभिमान तोड़ा। अगर देह अभिमान होता तो फिर क्या सोचते? कैसे हम बाबा को बताएं, भूल तो हो गई है, बाबा क्या सोचेगा, बाबा क्या कहेगा, परंतु नहीं, वो सागर है, वो हमारा बाप है। बाप को या माता पिता को बच्चों के लिए रहम आता ही है, तो बाबा तो रहम दिले ना, तो बाबा तो माफ कर देगा। अच्छा अभी आधे के लिए क्या है, बच्चे आप योग लगाना, लेकिन कहीं वर्णन नहीं करना। बाबा को बता दिया ना, बाबा को मालूम पड़ गया, अभी कहीं वर्णन नहीं करना। क्यों कि हर जगह पर वर्णन करते हैं तो हर एक कोई बाबा के समान नहीं होते हैं जो उसके लिए दया भाव रखे। तो इस बाबा के दया भाव के कारण, क्षमा के कारण जो बच्चा मानो थोड़ा गिर गया, बाबा की वो दया दृष्टि के कारण फिर खड़ा हो गया। गिरने वाले को भी उठा लो, तो बाबा ऐसे उठा लेता था। तो क्षमा भाव अगर हमारे जीवन में है और कोई व्यक्ति गिर भी गया है, चलो ठीक है, संस्कार है, आधा कल्प की द्वापुर से लेकर आज तक संस्कार के वसीभूत आकर्षण हो गया, थोड़ा भूल कर दी, थोड़ा ऐसा काम कर दिया, कोई अर्जा नहीं, हम उसको क्षमा कर दे रहे, बच्चा उठ जाएगा, चोट लग गई ना, उठ जाएगा। हमारी मदद के आधार से बाबा उम्मीद ऐसे रखता है, इसलिए हम बच्चों को भी ऐसी बहुत ऊंची स्थिति बनानी है। ऊंची स्थिति के आधार से हमारे मार्क जमा होते हैं। अभी अभी आप सभी जो रेगुलर सवेरे प्रातः क्लास करते होंगे, प्रातः क्लास में चलती हुई बाबा की मुरली सुनते होंगे, तो अभी अभी रविवार को बाबा की अव्यक्त मुरली आती है रिवाइज कोर्स की, उस मुरली के अंदर बाबा ने ऐसे बताया, आज मैं वतन में बैठकर बच्चों का चार्ट देखता हूँ और वो चार्ट देख करके मैं बच्चों को मार्क्स देता हूँ, मैं क्या करता हूँ वो भी बाबा सुनाते हैं। तो बाबा चार्ट में क्या देखते हैं, तुम्हारी मनसा की, वाचा की, कर्मणा की पवित्रता कैसी है, वो बाबा ने देखा। हम ऐसे समझे कि हम पवित्र बन गए, ब्रह्मचर्य की धारणा कर ली, इतने तक नहीं है पवित्रता, चलो ब्रह्मचर्य की धारणा तो कर ली, तभी तो हमको मधुबन में बाबा को मिलन के लिए छुट्टी मिलती है। अगर ये धारणा हम नहीं करते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती है। परंतु हमारा ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा बाप के कदम कदम पर हमारा आचरण होना चाहिए, वो है सही सही अर्थ में ब्रह्मचर्य। तो बाबा ने मनसा के लिए बताया कि जरा भी दिन भर के अंदर जब से अलौकिक जन्म प्राप्त किया है तब से लेकर के आज तक कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, तो व्यर्थ संकल्प चला तो खराब अशुद्ध संकल्प हो गया, तो बच्चे तुम्हारी मनसा की पवित्रता का खंडन हो गया, अभी वो खंडन हमको नहीं करना है। मनसा की पवित्रता हमारी शुद्ध संकल्प वाली चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प वाली चाहिए, और उन मनसा की पवित्रता के लिए बाबा ने हमको बहुत अच्छा खजाना दिया हुआ है, और उस खजाने का अगर हम प्रयोग करें, जैसे मानो मनसा की पवित्रता है हर एक का पाठ मुझे साक्षी होकर देखना है, जैसे हम ड्रामा देखने जाते हैं, पिक्चर देखने पहले जाते थे, अभी तो नहीं जाते हैं, परंतु उसका अनुभव है ना, दिखते जाते, तीन घंटे का शो होता है, हमने टिकट निकाली है, हम सीट पर बैठे हैं, और वहां उस समय जो भी तीन घंटे में दृश्य आता है हम शांति से बैठे रहते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, एक दो को मारता है, कोई खून करता है, लेकिन हम देखते रहते हैं। तो साक्षी होकर के देखने का अभ्यास जैसे उस समय है, वैसे मुझे प्रैक्टिकल जीवन में हरेक का पार्ट साक्षी होकर के देखना है। और जो पार्ट मैंने देखा, बोलने का, चलने का, जो भी मैंने देखा उस समय, हमको जरा भी व्यर्थ संकल्प न चले, उसके लिए बाबा ने कौन सा हथियार बताया, बच्चे ड्रामा। नुकसान हुआ, फायदा हुआ, जो भी कुछ हुआ आप ऐसे याद करो, ड्रामा। कल्प पहले ऐसे हुआ था, अब भी हुआ है, कल्प के बाद भी होगा। तो ड्रामा को सामने रखा तो फुल स्टॉप लग गया। अच्छा, फुल स्टॉप लग गया तो हमारा मन चलेगा फिर। इस पर हमको बहुत प्रैक्टिस करती है, किसी बात पर हमारा मन न चले, व्यर्थ संकल्प न चले, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? हमें समर्थ संकल्प करना है, शक्तिशाली संकल्प करना है, और उसी संकल्प के आधार से हमारी मनसा पवित्र होंगी और हमको मार्क बहुत अच्छे मिलेंगे। ये स्कूल है, सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है, हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमको रेस नहीं करनी है, रेस करनी है कौन आगे जाता है। मैं जाती हूँ, आप जाते हो, ये जाते, कौन आगे जाता है? मुझे जाना है, मुझे नंबर लेना है, मुझे अपना जीवन बनाना है। ऐसे हमारी मनसा की पवित्रता, वाचा, अगर वाचा की पवित्रता है तो आपके बोल में क्या मधुरता होगी, ये उसका प्रमाण है। हम कैसे समझे कि हमारी वाचा पवित्र है? तो आपका बोल मीठा होगा, आपका बोल मधुर होगा। जरा भी आपकी मधुरता खंडन नहीं होगी, और थोड़ी भी खंडन हुई तो वाचा अपवित्र। और कर्मण, वह पवित्रता है, उसकी निशानी क्या है? आप अपने जीवन से जो अनुभव करेंगे, दो बातें मेरे जीवन में होंगी, एक नम्रता, दूसरी संतुष्टता। हम स्वयं से संतुष्ट रहेंगे। हमें क्या करना है? ईश्वरीय सेवा करनी है, दो रोटी खाना, बाबा का गुण गाना, त्यागी और तपस्वी हम है। अगर थोड़ा भी नीचाई ऊंचाई हमको देखने में आई, कोई हर्जा नहीं, हम संतुष्ट रहे। तो कर्मणा की पवित्रता है, उसका रिजल्ट है जो अभी बाबा ने एक सप्ताह पहले की या इस रविवार की अव्यक्त रिवाइज कोर की मुरली में बताया गया। और जिनों तीनों का ये चार्ट अच्छा है, तो मानो ऐसी पवित्रता, उसको मार्क बहुत अच्छे मिलते हैं। और मार्क तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके जीवन में सदा ही खुश नुमा जीवन, सदा हर्षित चेहरा। बाबा हमारे से क्या चाहता है? अभी बाबा यही चाहता है कि बच्चे आप इतने हर्षित रहो, इतने खुश नुमा रहो, जो दुनिया के चारों कोने में अशांति है, कोई कोना ऐसा नहीं है विश्व के अंदर जिसको शांति हो। और वो आत्माएं आपके सामने आएंगी, और आप कुछ ना भी बोलेंगे तो भी आपका हर्षित चेहरा, खुशनुमा चेहरा देख करके आपके संपर्क में आने वाली आत्मा बोलेंगी, आज तक मुझे ऐसी खुशी नहीं मिली है जो मुझे आपके संग से बहुत खुशी मिली है। हमने कुछ बोला नहीं है, कुछ किया नहीं है, बस सिर्फ उनके साथ व्यवहार में आए, और व्यवहार में आए तो ऐसा अनुभव करेंगे कि बहन जी हमें बहुत शांति मिली। आपका चेहरा देखते हैं ना, तो चेहरा देखने से ही शांति मिलती है। वो बाबा का हमारे प्रति बाबा की आस है और बाबा की उस आस को हमें करके दिखाना है। ये श्रेष्ठ स्थिति हमारी, इसलिए आप किसी के लिए कोई भी कदम न उठा करके क्षमा भाव अपने जीवन के अंदर रखो। अच्छा, कोई भूल चूक है तो भी बहुत प्यार से साथ में बिठाकर उसको समझाओ, ये आपने किया, भले हम कुछ आपको बोलते नहीं है लेकिन करना नहीं चाहिए था, आगे के लिए आप ध्यान रखना। ऐसा हम व्यवहार जीवन में करेंगे तो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ हो जाएगी। और फिर सवेरे उठो, जिन्हों के साथ भी मानो हमारे से कुछ भूल हो गई है, हमारे से कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे दो शब्द हमने ज्यादा बोल दिया है या दो वाक्य हमने ज्यादा बोल दिया है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा होती है ना, उसको अंदर से रियलाइज होता है, और जब रियलाइज होता है ना तो समझती है ये दो वाक्य मैंने ज्यादा बोल दिया, फलाने व्यक्ति को ज्यादा बोल दिया। तो आप अंदर ही अंदर मनसा से उस व्यक्ति को सामने रख करके और उसको आप वाइब्रेशन दो, भैया आप मुझे माफ कर देना, मैं सचमुच रियलाइज करती हूँ कि मैंने दो वाक्य जो बोला ना उनसे आपको मैंने दुख दिया है। अब ये दुख आप महसूस नहीं करना, मैं आपसे अंदर ही अंदर माफी मांग रही हूँ। तो ऐसे आप खुद माफी मांग लो अगर भूल हो गई है तो। अगर आपको लगता है कि भले फलाने कोई मेरे से छोटे भी है और हम बड़े हैं, ऐसे नहीं है कि छोटे ही भूल करते हैं, कभी बड़े नहीं करते हैं, बड़ों से भी हो जाती है, तो हम बड़े हैं, हमारे से भूल हो गई है, कुछ ऐसा ज्यादा बोल दिया है, तो उसको बुलाओ और बुलाकर उसको बिठा करके बोलो, बहन ये मैंने ज्यादा बोल दिया, आपको दुख हुआ होगा ना, अभी दुख नहीं लगा ना हो, मेरे मन में और कुछ बात चल रही थी, कोई समस्या की बात थी और उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने ऐसे बोल दिया है, आप मुझे माफ कर देना। तो किसी को क्षमा कर देना और किसी के साथ हमारा अगर भूल से ऐसा कोई व्यवहार हो गया तो माफी मांग लेना, तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। और श्रेष्ठ स्थिति का यादगार आज शास्त्रों के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कई ऐसे दृष्टांत बताए हुए हैं, जो बाबा कहते हैं शास्त्रों में आटे में लूण जितना ही सत्य है, बाकी सब झूठे ही झूठ है, लेकिन जो सत्य है कई ऐसी सत्य बातें हैं कि आध्यात्मिक रूप से अगर उन बातों को हम उठावे तो हमको बहुत अच्छी लगती है। जैसे महाभारत में बताया हुआ है, श्री कृष्ण और उनके सब छोटे छोटे दोस्त आपस में खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो जमुना नदी में बॉल गिर गया। अभी वो बॉल गिर गया तो उसके लिए अगर उसमें कोई जावे तो मर के ही बाहर निकलता है। अच्छा, वो चला गया, माता को पता पड़ा, जसोदा को, वो तो बिल्कुल जैसे बेहोश जैसी हो गई। जब श्री कृष्ण अंदर गया है, पता नहीं उसको क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण जब अंदर गए और अंदर गए तो विजयी बनकर के ऊपर आए, शेष नाग पर डांस करते हुए ऊपर आए। ये श्रेष्ठ स्थिति का प्रतीक था कि वो अंदर गए परंतु उसके मैं नहीं हो गए, ऊपर गए। तो संसार की कई परिस्थितियां हमारे सामने आती है, क्योंकि हम रहते हैं बुद्धि से संगम युग पर खड़े हैं, परंतु रहते हैं कलयुगी मनुष्यों के साथ। जब उन लोगों के साथ रहते हैं तो कई प्रकार के तमो प्रधान स्वभाव और संस्कार की बातें आती है और हमारे सामने मन में नहीं होता है, चित्त में नहीं होता है, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, स्वस्थिति जो हमारी पावरफुल है और उस पावरफुल स्वस्थिति का आधार लेकर हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें, वो भूल जाती है। उसको हम भूल ना जाए, हम अपनी स्वस्थिति में रहे। मैं कौन हूँ, हम कहते ओम शांति, दादी जानकी जी बताते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा ओम शांति, मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा एक बाबा। तीसरा ओम शांति बोलते हैं, मेरा कर्तव्य क्या, जो हम बाबा के साथ रह करके उस दिव्य कर्तव्य को हम कर सके, तो मेरा कर्तव्य क्या। तीन ओम शांति बोलते हैं, उसका ये अर्थ है। तो श्री कृष्ण उसके अंदर गया ना, तो उसके मैं नहीं हो गया, उसके चिंतन में नहीं गया। हम क्या करते हैं, परिस्थिति आती है, कोई बातें ऐसी आती है, तो हम उसके मैं हो जाते हैं, ऊपर नहीं रहते। श्री कृष्ण जैसे ऊपर रहा ना, शेष सैया पर ऊपर खड़े होकर के डांस किया, तो हमें ऊपर रहना है, उसके अंदर नहीं जाना है, परिस्थितियों का चिंतन नहीं करना है। हम बाबा के बच्चे पहाड़ को राई बनाने वाले हैं, ऐसे खजानों का प्रयोग करके अपने जीवन के अंदर उसका स्वरूप बनना है। पहाड़ को भी हम राई बना सकते, राई को भी रूह बना सकते हैं। जो आदर्श नागरिक होता है ना, वो रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज आती है जो मुझे तो हैरान करती है, परंतु दूसरे को हैरान न करे, तो हटा करके बाजू में रखते हैं। तो हम तो आदर्श नागरिक थोड़ी है, हम तो आदर्श ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। इसलिए भले कोई बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी चीज हमारे सामने आई है, परंतु उसको हम बाजू में न भी रख सकते हैं, तो उससे हट करके हम अपना मार्ग ले ले रहे। तो हम पहाड़ को राई बनाने वाले, राई से भी एकदम हल्का रू बना देना, तो जो बच्चे सदैव बाबा की मुरली सुनकर उसका दिन भर में स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, थोड़ा अंतर्मुक्ता में रहते हैं, थोड़ा शांत चित होकर चलते हैं, तो वो बच्चे उसका चिंतन करते करते स्वरूप में लाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं। और जब प्रैक्टिकल में लाते हैं, तब देखो हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहती है। इसलिए हम सवेरे भी अमृत वेले उठकर बाबा को जब याद करते हैं, तो दिन भर में किसी के साथ कुछ भी अगर हो गया है, तो हम अपने वाइब्रेशन के आधार से भी ऐसे बोल दे रहे, आप सभी हमको माफ कर देना, अगर कोई संकल्प से भूल हुई है, मेरे बोलने से कोई भूल हो गई है, कोई कर्मणा से भूल हो गई है, आप मुझे माफ कर देना। और किसी ने अगर हमारे से भूल की है, तो हम भी अपने वाइब्रेशन से उसको ये वाइब्रेशन दे दे रहे, हम आपको माफ कर देते हैं। हम कोई आपकी बात मन में नहीं रखते, चित्त में नहीं रखते, बिल्कुल माफ। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के अंदर जो सभी धारणाएं की, उसके अंदर बाबा ने भी बाबा की एक बार बात चंद्रमणि दादी ने क्लास में सुनाई थी, और क्लास में बताया था कि बाबा रोज रात को जो भी कुछ होता है तो समेटने की शक्ति धारण कर ले, समेट लेना सब कुछ। तो हम एकदम समेट ले सारे दिन की बातों को, और समेट करके हम बिल्कुल प्लेन हो जाए, और प्लेन होकर सवेरे उठे तो कंप्लीट प्लेन बुद्धि। ऐसे हमें अपने जीवन को बहुत ऊंचा, ये हमारी ब्राह्मण जीवन की लाइफ देवताओं से भी कहते ऊंची है। देवता भी हमारे जितने ऊंचे नहीं है, परंतु हम देवताओं से भी महान आत्मा जो ब्राह्मण आत्मा है। तो बाबा ने हमको चुन करके, क्यों सारी दुनिया में कितनी करोड़ों की संख्या में व्यक्ति है, किसी को नहीं चुना और मुझे चुन लिया बाबा ने। एक तो उसकी हमको खुशी हो गई अंदर ही अंदर कि बाबा ने मुझे अपना बना लिया। कल पहले भी बाबा ने बनाया था, आज भी मुझे बनाया, तो मुझे अंदर ने कल्प कल्प का मेरा ये पार्ट है। कल्प कल्प हम प्रभु मिलन करेंगे, परमात्मा से हमारा ऐसा मिलन रहेगा। जो हम भगवान को ढूंढते रहे, आज हमको मिल गया है, तो मिल गया है तो कितना हमको हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करना चाहिए। जब हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करते हैं तो हड्डी हड्डी हमको सुख मिलता है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ हड्डी हड्डी माना दिल का होना चाहिए, ऊपर ऊपर का नहीं। कोई देखे हम पुरुषार्थ करते हैं और देखने वाला ये सोचे हाँ ये करते हैं, उसने मुख से बोला और हम खुश हो गए, ऐसे नहीं। हमारा पुरुषार्थ दिखाने वाला नहीं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ दिल से बड़ी खुशी से अंदर से होना चाहिए। बाहर से हम भले साधारण दिखाई पड़े, लेकिन अंदर से असाधारण। देखो शिव बाबा इस धरा पर आए हैं, कितना साधारण रूप में आए हैं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, अगर श्री कृष्ण के रूप में आता है तो कितने सब लोग भागते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल साधारण रूप में आया हूँ। तो बाबा का रूप बाहर से भले साधारण है, लेकिन अंदर में क्या है, बहुत असाधारण हस्ती है। असाधारण हस्ती कैसे है, 84 जन्म लेने वाली लास्ट जन्म में आत्मा श्री कृष्ण वाली है। तो श्री कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म भगवान का रथ और उसमें देखो भगवान विराजमान। आज ऐसा बाबा हमारे साथ में है, कहते नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो हमारी मुट्ठी में कौन है, जिसका साथी है भगवान। गीत भी सुनते हैं ना, तो हमारा साथी कौन है, हमारा साथी स्वयं भगवान है। तो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। दुनिया की कितनी भी आंधी आवे तूफान आवे, लेकिन हमारा साथी भगवान है। और वो साथी को साथ रखने वाले सारी दुनिया के अंदर गिने चुने हम बाबा के बच्चे बहुत थोड़े से, जो पांडवों का यादगार है, शिव शक्तियों का यादगार है, हम वो बाबा के बच्चे। तो अभी वो बाबा के बच्चे जो बाबा का गुण है, जो बाबा का कर्तव्य है, वही हमारा है। तो बाबा का गुण है सागर, कईयों की बातें ऐसी अवगुण की आती तो भी बाबा सागर क्या करता है। आज पानी का सागर भी देखो तो कीचड़ा अंदर समा जाता है, और कीचड़ा समा जाता है और पानी हमेशा स्वच्छ होता है, कीचड़े वाला नहीं होता है। हाँ, तो कीचड़े को समा लिया। तो बाबा भी हरेक को, चाहे कोई भी किसका अवगुण है, कोई भी किसकी कहीं कमी है, उसको समा लेता है। और समा करके मेरे बच्चों में ये कमी है, रहनी नहीं चाहिए, बहुत प्यार से समझाता है। बाबा कभी हम बच्चों से थकता नहीं है, अथक बन करके बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं। चाहे साकार रूप में बाबा, तो उन्होंने भी बहुत सेवा की। हाँ, अच्छा अव्यक्त हुए तो भी अभी भले बाबा, हाँ इतना समय हो गया, रथ भी अभी आयु भी बड़ी हो गई, बाबा थोड़ा समय आते बीमारी के कारण, नहीं तो बाबा तो सवेरे 6-6, 7-7 बजे तक बच्चों से मिलते, मुलाकात करते, एक एक को मिलते, वरदान देते, कितनी अथक सेवा। आज भगवान देखो इस सृष्टि पर हमने बुलाया गए, हमारे बुलावे पर आया गए, और कितनी अथक सेवा करते हैं, तो हम रिटर्न क्या देंगे बाबा को, यही रिटर्न देंगे। बस कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी जैसे गुणों को हम अपने जीवन में अपना कर, हम आपसे भले मुख से बोलते नहीं है, मनोमन हम दिल से बाबा आपको सामने रखकर हम ऐसी प्रतिज्ञा रोज आपसे हम लेते हैं और उस पर हम ध्यान रखते हैं, हम अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनावे जो हमारी स्थिति के आधार से सचमुच आपने दुनिया के आगे हम सभी को प्रत्येक किया, अभी हम आपको प्रत्येक करेंगे। रात्रि में अगर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो ये ब्रह्म कुमारी वाले जा रहे हैं, ये ओम शांति वाले जा रहे हैं। अभी हम जूनागढ़ से आ रहे थे ना कार में, आबू आ रहे थे, कार में आए तो पुलिस ठहरो, कार रुका दिया। तो बहन हमारी कार चला रही थी, तो उस बहन को ऐसे हुआ कि पता नहीं पुलिस ने क्यों ऐसे कहा, रुको। अच्छा, फिर वो खिड़की के पास आए, आप ओम शांति वाले हो ना, देखो हमारे क्या आगे प्रत्यक्ष हो गए, हम बच्चों को बाबा ने कितना प्रत्यक्ष किया गए, ओम शांति वाले हो ना। हमने बोला हाँ। आज हम लोग नौकरी करते हैं, हमको इतनी अशांति है जो बात मत पूछो। तो क्या करें, आपके पास कोई पुस्तक हो तो बहन जी हमको दो ना, जो हम पढ़े तो हमको शांति मिले। उसने ऐसे कहा। टोली आदि तो सब हमने ली हुई थी, लेकिन पुस्तक नहीं था कुदरती। तो हमने बुलाया, आप इधर आओ। वो बहन कार चलाती थी ना, उस खिड़की के पास थे, तो मैंने बोला इधर आओ मेरे पास। तो हमने उनको बोला, आपको नौकरी करते हुए बहुत अशांति है ना, आप कौन हो, आप आत्मा हो। हम ओम शांति बोलते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अभी आप घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़े समय पर, चलो पुस्तक नहीं है, दोबारा मिलेंगे तो हम आपको देंगे, अभी पुस्तक नहीं है, आप इतना स्मरण में लाना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ और मेरा घर शांति धाम है। बस इतना आप स्मृति में रखना और ये रखते हुए और फिर आप अनुभव करना। फिर इस तरफ आए, गाड़ी चलाने वाली बहन के पास खड़े थे, बोला ओम शांति। तो मैंने कहा उसको प्रसाद दो, तो प्रसाद दिया। हमारे पास वो प्रसाद तो रखा हुआ है, सबको देते हैं, टोल टैक्स वालों को भी, तो उसको दिया। तो बोला ये प्रसाद तो कुछ नहीं है, और बहन जी ने तो बहुत अच्छा प्रसाद दे दिया। देखो पुलिस ने ऐसे बोला। अच्छा फिर आ गया है दूसरी जगह पर, तो फिर पुलिस ने खड़ा किया, तो बहन जी ने जल्दी जल्दी पट्टा लगाया, नहीं लगाया था ना, तो उसको ऐसे हो गया पता नहीं, तो खड़े हो गए दो पुलिस। तो बोला हम तो ब्रह्म कुमारी वाले है। बोला अच्छा अच्छा ब्रह्म कुमारी वाले हो, ठीक है आप नाम लिखाओ अपना। तो ब्रह्म कुमारी कमल बेन काल चलाती ना, उसका नाम लिखा। अच्छा चलो आगे जाओ, कुछ नहीं बोला, और कार को अभी चलो। तो देखो हम ओम शांति वाले, हम ब्रह्म कुमारी वाले है, दुनिया के आगे ऐसे हम प्रत्यक्ष हो गए है, और ये बाबा ने हमको प्रत्यक्ष किया है, बाबा ने हमको इतना महान बनाया है। अभी हमारी अव्यक्त बाप दादा की, हम बच्चों के प्रति यही आस है, यही चाहना है, बच्चे अपनी चलन को डेरी बनाओ। मम्मा हमेशा ऐसे कहती थी, हमने मम्मा को देखा, बाबा को देखा, बॉम्बे में हम थे, वहां से हम निकले, वहां जब अभी यहाँ तो हॉस्पिटल हो गई, पहले थी नहीं, तो थोड़ा भी बीमारी आएंगी तो बॉम्बे आना पड़ेगा, बॉम्बे आएंगे फिर एक जगह पर बड़ा हॉल लेंगे, वहां हम सभी जाएंगे क्लास आदि करेंगे। तो मम्मा ऐसे कहती थी, हम देवता है ना, तो हमको चलना भी कैसी चाहिए, ऐसे चलना चाहिए कि जो हम हमारे चंपल का भी आवाज न हो, ऐसे चलना चाहिए। कहीं ऐसे चलते हैं, ऐसा आवाज आएगा हम तुरंत कहेंगे अब फलाना भाई आ रहा है, आवाज से मालूम पड़ जाएगा या फलानी बहन आ रही है, ये उसके पैरों का चंपल का आवाज है। तो चंपल का आवाज न हो, धरती को भी हमें दुख नहीं देना है। मम्मा ऐसे सुनाती थी। और हमारी चलन बहुत अच्छी चाहिए, बाबा कहते हैं ना, तो मम्मा ऐसे कहती थी कि हम सभी कौन है, इस नाटक के अंदर हीरो हीरोइन एक्टर है ना, हम हीरो एक्टर है, तो सबकी नजर किसके ऊपर होती है? फिल्म के अंदर या नाटक के अंदर जो पार्ट बजाते हैं उसमें अधिक नजर किस पर होती है? हीरो एक्टर के ऊपर होती है ना, हीरो और हीरोइन के ऊपर। तो हमारे पर सारे विश्व की नजर है। तो सारे विश्व की नजर कैसे है? बाबा ने तो हमको तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन वो लोग तो चौथा पांचवा छठे कितने नेत्रों से देखती है हमको। देखे अब ये ब्रह्मा कुमारी है ना, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे उसकी धारणा है, वो लोग देखते हैं, हमको देखते हैं, औरों को नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा हुआ है कि हम कोई विकारों को छोड़ते हैं, और हमने कहा हुआ है। एक युगल था, ध्यान में चल रहा था, पत्नी नहीं चलती थी, पति चलता था। एक बार भोजन बनाते उसने देखो ऐसी रोटला के कुछ सब्जी के बनाते, उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। भोजन करने बैठे तो उसने टेस्ट किया कि देखो अभी ज्यादा नमक डाल दिया, इसको कितना गुस्सा आता है। अभी उनको मानो गुस्सा आ गया, तो आपको तो गुस्सा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो ना, तो आपने क्या बोला है कि हम गुस्सा हमने छोड़ दिया। तो पत्नी ने कहा आपको अधिकार नहीं है गुस्सा करने का, मुझे अधिकार है, क्योंकि मैं कोई ज्ञान में नहीं जाती हूँ, तो मैंने कोई दाव नहीं लगाया है कि मैंने कोई विकारों को छोड़ा है, इसलिए मैं क्रोध कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें भी हमारे सामने आती है और आएंगी, लेकिन हमें उसमें क्या पास होना है। चलो अगर नमक ज्यादा हो गया तो क्या, आज तो नमक ज्यादा पड़ गया है, अच्छा ठीक है ज्यादा पड़ गया ना, तो हम तो सिर्फ आपको कहते हैं भले पड़ गया कोई अर्जा नहीं, अच्छा हम सब्जी में अभी थोड़ा दही डाल देते हैं या थोड़ा लस्सी डाल देते हैं तो नमक कम हो जाएगा, आप थोड़ा दही डाल दो या उसमें लस्सी डाल दो तो नमक ज्यादा नहीं लगेगा आपको, वो उसका लेवल आ जाएगा अपने आप। तो हमें बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करना है। किसी के द्वारा दूध गर्म करते करते दूध गिर गया, कोई अर्जा नहीं, आप घबराना नहीं, ये दूध इसलिए गिरा अगर आपके और हमारे पेट में जाता और उल्टी हो जाती तो अच्छा हुआ गिर गया, कोई अर्जा नहीं, आप घबराना नहीं, ये क्षमा भाव हो गया। किसी व्यक्ति को हल्का बना देना या कोई ऐसी बात डांटना, उनकी भी स्थिति बिगड़ी हमारी भी बिगड़ी, हमने बोला अयोग्य थोड़ा आवेश से बोला तो हमारी स्थिति पर असर तो होगी ना, जरूर होगी, इसलिए हमें बहुत अच्छी अपनी श्रेष्ठ स्थिति का लक्ष्य रखना है। उसमें व्यवहारिक जीवन में कोई ना कोई बातें सामने, प्रकाशमणि दादी हमेशा कहती बातों को नहीं देखो, बात को देखा ना एक अक्षर बदल दो, बात की जगह पर बाप, तो की जगह पर क्या लगा दो, प लगा दो, बात नहीं लेकिन बाप को याद करो। देखो बाप को याद करेंगे तो बात भूल जाएगी ना, तो हमें सब कुछ भूलना है, एक सेकंड पहले क्या हुआ वो भी भूल जाना है। चलो अभी 6:30 बज गए हैं, हमको समय दिया गया है 6:30 बजे योग शुरू होगा, तो अभी हम अपना समाप्त करते हैं और मीठे बाबा को अभी याद करेंगे। ओम शांति।